तफसीर देखेंगे हम आयत नंबर 16 से। अलम यानी लिल्लज़ीन आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक्की वला यकूनू कल्लज़ीन ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम वकसीरुम मिनहुम फासिकून। जो लोग ईमान लाए हैं, क्या इनके लिए ऐसा वक्त नहीं आया कि अल्लाह के ज़िक्र से और जो हक नाजिल हुआ है इससे इनके दिल पसीज जाएं और उन लोगों की तरह न हो जाएं जिन्हें इससे पहले किताब दी गई, फिर एक तवील मुद्दत गुजर गई तो इनके दिल सख्त हो गए, तो आज इन में से अक्सर फासिक है। यहाँ से सबक का आगाज है और बहुत ही खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला एक सवाल करते हैं ईमान वालों से, क्या अलम यानी क्या नहीं आया। यानी का लफ्ज़ जो है ई ना से है, हमज़ा नून या इसका रूट है, घड़ी और वक्त के लिए आता है। अय्यान मुरसाहा हम पीछे पढ़ चुके, आगे भी आएगा। बर्तन को भी आनिया कहते हैं, तो यहाँ मुराद है वक्त की कोई घड़ी। वो घड़ी नहीं आई, वो वक्त नहीं आया, ये मुराद है इससे। लिल्लज़ीना आमनु ईमान वालों के लिए, क्या वक्त कि अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए नरम हो जाएं। तख्शा का लफ्ज़ खशा से है, खशा खाशीन आइन से है। खुशू कहते हैं दिल का नरम होना और नसीहत को कबूल करना और इताअत के लिए राज़ी होना। तीन बातें हैं इसमें, अपने दिलों का जायज़ा लेने के लिए हम भी नोट कर सकते हैं। दिल का नरम होना, नसीहत का कबूल करना और इताअत के लिए राज़ी होना। कुछ लोगों का दिल तो नरम होता है, किसी की बात सुनते हैं तो रोने लग जाते हैं, लेकिन नसीहत कबूल नहीं करते और इताअत के लिए तो बिल्कुल ही राज़ी नहीं होते। कुछ का दिल भी नरम होता है, नसीहत कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन अमली तौर पर इताअत के लिए राज़ी नहीं होते। हर वो शख्स खुशू वाला है जिसके अंदर ये तीनों सिफात हैं। ख़ास तौर पे यहाँ सवाल किया गया ईमान लाने वालों से, लेकिन यहाँ मुराद हर वो शख्स है जो अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों में शामिल करता है, दावा करता है, और इसके बावजूद उसका दिल ईमान के दर्द से खाली है, इस्लाम का दर्द नहीं। ये वो लोग हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं कि चारों तरफ से कुव्वतें इस्लाम को मिटाने पर तुली हुई हैं, इसके बावजूद भी वो अपने आप को इस्लाम के लिए पेश नहीं करते। बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाला अंदाज़ है इस आयत का कि क्या भी वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह की खशियत के साथ पसीज जाएं, दिल नरम हो जाएं। शुरू में हमने देखा था कि ये सूरत जो थी ये ग़ज़वे अहज़ाब और सुलह हुदैबिया के दरमियान में नाजिल हुई थी। ये वो वक्त था कि इस्लाम के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थीं, लोग इस्लाम को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे। ग़ज़वे बदर में कुफ़ार को शदीद किस्म की शिकस्त हो चुकी थी, उहद में भी मुसलमानों के हक़ में उस तरह से फ़ैसला नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था, और ग़ज़वे खंदक में तो ख़ास तौर पे मुसलमानों की मदद ग़ैबी असबाब के साथ की गई कि मुसलमान कुछ ना होते हुए भी दुश्मनों के मुकाबले में जीत गए। ये सारे वाक़यात जो थे ये इस बात की तमहीद थी कि इस्लाम और मुसलमानों के साथ अल्लाह ताला की मदद है। और ख़ास तौर पे वो कबाइल जो गैर जानिबदार थे वो ये तासर ले रहे थे कि इस्लाम और कुफर दोनों बराबर की चोट पर हैं। किसी वक्त भी इस्लाम का गलबा भारी हो सकता है और कई साल की रिवायतें जो हैं वो टूट जाएंगी और कुफार जो हैं उनको दबना पड़ेगा। साथ ही साथ कुरान पाक की वही का जो सिलसिला जारी था जिससे मुसलमानों की तरबियत हो रही थी, उनकी दिलसोजी हो रही थी, तो इससे लोगों को अब ये शक हो गया था कि हो ना हो आने वाले वक्त में पल्ला जो है वो मुसलमानों का ही भारी होगा। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला इस आयत में ईमान वालों को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि देखो, अगर तुम ये समझते हो कि इन हालात में अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे, तो फिर तुम्हें अपने दिल के अंदर खशियत पैदा करनी होगी। अल्लाह ताला ने जो ये बात कही कि वमा नज़ल मिनल हक की, और जो नाजिल किया है हक में से, हक से मुराद जहाँ कुरान पाक है, और उस वक़्त तक जितना भी कुरान पाक नाजिल हुआ था। पीछे मुनाफिकीन का तذکرہ हमने पढ़ा कि पुल सरात पे ईमान वालों से नूर की भीख मांगेंगे। यहाँ अब अल्लाह ताला ईमान वालों का तذکرہ करते हैं कि देखो, अपने ईमान को परखना है तो अपने दिल की हालत को चेक कर लो। अगर अल्लाह की बात सुन के दिल नरम होता है, उसके बाद नसीहत कबूल कर लेते हो और इताअत करने के लिए तैयार होते हो, तो समझ लो कि तुम्हारे दिल में खशियत आ गई। और अगर ये नहीं है, तो फिर तुम अपने आप को कुछ भी कह लो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ नहीं होगी। साथ ही साथ मुसलमानों को नसीहत की गई कि अल्लाह की चुनी हुई कोई कौम कब बहकती है, कब उससे अल्लाह की मदद हट जाती है, जब उस कौम के अंदर खुशफहमी आ जाती है जो किसी पिछली कौम में आई थी। इसीलिए आयत के अगले हिस्से में मुसलमानों को कहा गया कि वला यकूनू कल्लजीन ऊतुल किताब मिन कब, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी उन जैसे न हो जाना। इशारा है इधर यहूद और नसारा की तरफ। अपने वक्त की चुनी हुई कौमें थीं, अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में अपने पैगाम के लिए चुना, एक बहुत बड़ा मकसद देकर दुनिया में भेजा। लेकिन जब भी कोई कौम ख्वाहिशात और लस्ट की दिलदादा हो जाती है, तो वो बड़े मकसद को छोड़कर छोटे मकसद के लिए जीते हैं और इज्तमाईयत की बजाय इनफरादियत की ज़िंदगी बसर करने लगते हैं। और इनफरादी ज़िंदगी बसर करना आसान होता है, अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी, मनमानी, जो चाहो करो। लेकिन कभी भी इनफरादी कोशिशों से कौमों की हालत नहीं बदलती। इसके लिए एक इज्तमाई माहौल बनने की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला मुसलमानों को एक जमात और एक ऐसा गिरोह बनाना चाहते हैं कि जो मकसद की खातिर हर चीज़ को पीछे डाल दे। तो कहा, देखो, अहले किताब ने जो गलती की थी वो यही था कि उन्होंने अपनी इज्तमाईयत को तोड़कर छोटी छोटी जमातों और टुकड़ों में बट गए। नतीजा क्या हुआ कि फताल अलैहिमुल अमद, फिर इन पर एक तवील अरसा गुजर गया। किस चीज़ से? किताब नाजिल हुए हुए। जब भी अल्लाह का कोई नबी लोगों के बीच में मौजूद होता है, तो नसीहत के लिए वही का सिलसिला जारी होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे सूखी ज़मीन पर मुसलसल बारिश पड़ती रहे तो मिट्टी गीली हो जाती है, नरमी आ जाती है। लेकिन अगर कहीं कुछ अरसे के लिए बारिश रुक जाए, तो आपने देखा होगा कि वो मिट्टी जो पहले पानी की वजह से गीली हुई थी, अब वो खुश्क होकर और ज़्यादा सख्त हो जाती है, ठीकरी बन जाती है। यानी एक वो मिट्टी है जिस पर कभी पानी नहीं पड़ा, वो तुराब की सूरत में, डस्ट की सूरत में नरम होती है। लेकिन जिस मिट्टी पे पानी पड़े और पानी के बाद वो दोबारा खुश्क हो, तो वो बिल्कुल एक तख्ता बन जाती है। यही हाल लोगों के दिलों का होता है। जब वो वही की बारिश के पानी में नहाते रहते हैं तो दिल नरम होता है, लेकिन खुदा न खास्ता जूं ही वही से सिलसिला थोड़ा सा कटा, कुरान की महफिलों से थोड़ा सा दूर हुए, तो दिल और सख्त होने लगता है। और नतीजा फिर क्या होता है कि जितना हिदायत का सोर्स इंसान से दूर होता जाता है, उतना दिल सख्त होता जाता है। हत्ता कि एक नतीजा क्या आता है कि वह कसीर मिनहुम फासिकून, कल के खशू वाले आज फासिक हो गए। और फासिक फिस्क अल्लाह की इताअत की हदों से निकलने को कहते हैं, नाफरमान, ट्रांसग्रेशन के मानों में। यानी सरे आम इनकार करने वाले जो हुक्म ना सुन के अपनी जिंदगियों को अल्लाह की मर्जी के खिलाफ गुजारते हैं। ये जो ताला का लफ्ज़ है, ये तूल से है, तोए वाओ लाम, उर्दू में भी हम बोलते हैं तूलो अर्ज़। इसका मानी होता है किसी पर एहसान करना, किसी को इनाम देना। और अमद का लफ्ज़ मुद्दत और वक्त के लिए, एक लंबी मुद्दत के लिए ये लफ्ज़ आता है। कसत का लफ्ज़ जो है काफ सीन वाओ से है, कसवा, उर्दू में हम बोलते हैं कसवते कल्ब, और ख़ास तौर पर ये दिल की सख्ती के लिए आता है, कसावत कल्बी। इसका ऑपोजिट खुशू कल्ब होता है, यानी दिल या तो खुशू वाला होता है, वो ना रहे तो कसावत वाला हो जाता है। शिद्दत, ठोस, संग दिल होना। जब असल पैगाम से दूर हुए, تو دل سخت ہو گئے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے, وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, پھر وہ بھول گئے اس نصیحت کا حصہ جو ان کو کیا گیا تھا اور اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه, یعنی جب مردے کو زندہ ہوتا دیکھ کر بھی انہوں نے نصیحت نہ پائی تو ان کا دل اور سخت ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت سے دور کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام تھے وہ دنیا کے بہترین انسان تھے, کیونکہ وحی الہی کی بارش ہر لمحے ان کے سامنے ہوتی تھی اور وہ اپنے آپ کو اس کے اندر گیلا کرتے جاتے اور اپنے دلوں کو نرم کرتے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی, سب سے بہترین دور میرا دور ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد ان کا بہتر ہے جو ان کو ملے اور اس کے بعد وہ جو ان کو ملے. یعنی انسانیت میں سے امت مسلمہ کے ناطے سے سب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ امتیوں میں سے, آف کورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا یا دیکھا یا ملاقات کی یا نہ کی, یعنی اس کا ایک خاص کرائیٹیرین ہے. پھر اس کے بعد تابعین. تابعین کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا. پھر تابعین کے بعد والا درجہ ہے تبع تابعین, جنہوں نے ایمان کی حالت میں تابعین کو دیکھا. یعنی یہ ہے وہ بہترین دور. اسی کے دوران آپ دیکھیے ہمارا اسلام سارا جمع ہوا, محدثین اسی دور میں آئے, آئمہ کرام اسی دور میں آئے, علم کے جو ذخیرے آج ہمیں کتابوں کی صورت میں دیکھتے ہیں یہ سب اس دور میں ہوئے. لیکن اس کے بعد پھر آہستہ 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 دنیا کی محبت آتی گئی اور دین کی محبت کم ہوئی, حتیٰ کہ اگر آج ہم دیکھیں تو کثیر منہم فاسقون کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ نافرمان ہیں. ہمارے لیے اس آیت کے اندر عمل کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنا تعلق وحی الہی سے توڑ دیتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے. ہم سب کو اپنی اس نعمت کی بہت زیادہ قدر ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتاب سے جوڑا. الحمدللہ جو لوگ شروع سے پڑھ رہے ہیں وہ اب 27ویں پارے پہ پہنچ چکے. عموماً اس مرحلے پہ پہنچ کر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ انتظار کرنے لگتے ہیں کہ ہم کب فارغ ہوں گے, بس قرآن پورا ہو رہا ہے, مکمل ہو رہا ہے. لیکن میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ اس وقت تو آپ ایک بہت زیادہ گہری چھاؤں کے اندر ہیں. یعنی قرآن کا یہ روز کا پڑھنا, ہر روز 1-1.5 گھنٹہ آپ جو قرآن سنتے ہیں, یہ آپ کے دل کو نرم رکھے گا. اصل آپ کا امتحان وہ ہے جب خدا نخواستہ آپ کا قرآن پاک سے تعلق کم ہو جائے گا. اب اگر آپ روز سن رہے ہیں یا ہفتے میں 4 دن سن رہے ہیں یا 3 دن سن رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ نرمی ملتی جا رہی ہے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ قرآن پاک پورا کر لیتے ہیں نا تو اور سن ہو جاتے ہیں, ایک اور ہی تکبر آ جاتا ہے, جی ہم نے تو قرآن بھی پڑھا ہوا ہے. اس لیے نیت کیجئے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اس کے بعد اگر کوئی اور کورس آفر ہوتا ہے اس کو کرنا ہے, اس کے اندر اپنے آپ کو مزید سکھا کے, اور پھر اس کے بعد سکھانے والوں میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو شامل کر لیں. ورنہ یاد رکھیے کہ دل بڑا سخت ہو جاتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے دینداروں کے اندر ایک عجیب سی سختی آنے لگتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کھردرے ہو گئے, اکھڑ ہوئے, اور لوگوں کے لیے نہ وہ قابل برداشت ہوتے ہیں اور نہ وہ لوگوں کو برداشت کرتے ہیں. یہ مصنوعی علم ہوتا ہے. جتنا آپ کے اندر حقیقی علم آئے گا نا, جتنا آپ اپنے آپ کو علم والا کہنا سمجھیں گے یا دین والا, اس کا ایک بہترین معیار ہے کہ آپ کتنے نرم دل ہیں, آپ کے دل میں لوگوں کے لیے کتنی تڑپ ہے, اخلاص کتنا ہے, سنسیریٹی کتنی ہے. آپ کتنے لوگوں کے لیے روتے ہیں, کتنوں کے لیے تڑپتے ہیں کہ اللہ یہ دین سے دور کیوں ہے, اللہ تعالیٰ یہ کہاں جائیں گے, وہ بھی جہنمی, وہ بھی کافر, وہ بھی وہ. یہ دین کا طریقہ نہیں ہوتا. تو دین اللہ کے لیے بھی اور بندوں کے لیے بھی نرمی لاتا ہے دلوں میں. ایک شخص تھے جن کو اس ایک آیت نے بہت زیادہ بدل دیا. ان کا نام تھا فضیل بن ایاز. اپنے دور کے ڈاکو تھے. ایک موقع پہ ڈاکے کی نیت سے کسی گھر میں گئے, دیوار پلانگنے لگے تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور پڑھنے والا یہی آیت پڑھ رہا تھا کہ اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کی خشیت سے ڈر جائے. آیت ایسی تھی, پڑھنے کا انداز کتنا میٹھا ہوگا کہ فوراً رک گئے. اتنا اثر ہوا वही खड़े होके कहने लगे कि अल्लाह वो वक्त आ गया, अल्लाह वो वक्त आ गया, और तौबा की और उसके बाद इल्म के साथ जुड़े और अल्लाह ताला ने फिर इनको अपने दौर के सालेहीन में शामिल किया। मैं सोचती हूँ कि शायद आज हमारा भी वक्त आ गया हो। हम में से कितने लोग हैं जो इस आयत को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कहें कि अल्लाह आज वो वक्त आ गया, बहुत भाग ली तुझसे दूर, अब नहीं भागूंगी। मैं सोचती हूँ कि इंसान सारी जिंदगी रस्सी तोड़ाता रहता है। शैतान है ना जो अंदर नफ्स की सूरत में सरकशी करने वाला डाला हुआ है, पूरी जिंदगी रेजिस्टेंस होती है ये नहीं करना। हमारी रूह चाहती है कि अच्छा काम करें, लेकिन हमारा जिस्म गलत काम करवाता है और नतीजा क्या होता है कि बेसुकूनी की जिंदगी है। तो हम में से भी जो हकीकी खुशी लेना चाहता है वो इस आयत पे किसी को बताए बगैर अपने रब के साथ कोई भी बात कर ले कि अल्लाह बस अब पलटूंगी। देखिए कितने गुनाह किए ना हमने, कभी दिल भरा? कितने लोगों को हमने खुश करने की कोशिश की, क्या लोग खुश हो गए? हमने अपने आप को सजाने संवारने की कितनी कोशिशें की, कोई मेडल मिला आज तक? कोई मिस वर्ल्ड का खिताब? कितने ड्रेस पहने? क्या किसी ने हमें बेहतरीन ड्रेस डिजाइनर का लकब दिया? कुछ भी नहीं मिला। और अगर ये सब मिल भी जाए तो जरा जाके देखिए उन लोगों के दिल अंदर से कितने खाली हैं। अगर दुनिया की ये सारी चीजें सच्ची खुशी देती ना, तो कॉमेडियंस कभी खुदकुशी ना करते, फनकार और गुलूकार ये डिप्रेशन में ना चले जाते। ये क्यों जाते हैं कि दिल की खुराक क्या थी? अल्लाह का जिक्र, अला बि जिक्रिल्लाहि तत्मइन्नल कुलूब। पीछे हम पढ़ चुके कि अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों के अंदर नरमी पैदा कर दे। दिल नरम हो गया तो बातें भी अंदर जाएंगी, और अगर दिल नरम नहीं है ना तो बड़े बड़े अहकाम सुन के भी आगे से हंस देंगे कि हम नहीं करेंगे। एक जगह सूरह मायदा की वो आयत जो मैंने पीछे बोली, हवाला नोट कर सकते हैं आप, सूरह मायदा की आयत 13 है। फबिमा नक़दिहिम मीसाकहुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियतन युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिही वनसू हज़्ज़ा मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, के पस बवजह हमारे वादे के तोड़ने के हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को हमने सख्त कर दिया। वो कलाम को उसकी जगह से बदलते थे और उस नसीहत का हिस्सा भूल गए जो उनको की गई थी। और ये साइड पॉइंट लिख ले, दिल की सख्ती की बहुत बड़ी वजह दीन से दूरी नहीं होती, दीन को तब्दील करना होता है। मैं दोहराती हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि दिल की सख्ती जो है ना वो जाहिल की नहीं होती, यानी जो बेदीन लोग हैं ना जिन्होंने कभी दीन सीखा नहीं, सुना नहीं, बड़े मॉडस्कॉट घरानों में या सो ऑन जो भी आप कह लें, यानी अभी उन्होंने वो टेस्ट चखा ही नहीं, उनका दिल ज्यादा सख्त नहीं होता। दिल सख्त होता है जब दीन को बदलें, दीन को तावीलात में ढाल दें। मिसाल दूंगी इस बात को समझने के लिए कि मसलन एक शख्स है, आप कोई भी मिसाल ले लें, नमाज की चले बात कर लें। एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता, उसको उसकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है, उसका दिल इतना सख्त नहीं होगा जितना उस शख्स का दिल सख्त होगा जो कहता है क्या नमाज पढ़नी जरूरी है, कोई जरूरत नहीं, बस जो भी चाहो पढ़ लो, प्रे कर लो, वट एवर, यानी मैं नमाज को कोई फर्ज नहीं समझता। मिसाल एक औरत है, अच्छा लिबास नहीं पहनती, उसका दिल इतना सख्त नहीं होगा, उसका सख्त होगा जो कहेगी जी पर्दा तो दिल का होता है, बस दिल की बात है, कोई पर्दों की जरूरत नहीं है। जब लोग अपने गुनाहों को जस्टिफाई करने लगते हैं ना, लीगलाइज करने लगते हैं अपने गुनाहों को, नेकियों के रंग में पेश करते हैं ना, फिर दिल सख्त होता है। यहूद ने भी कलाम को बदला था, तहरीफ की थी तो दिल बदल गए। आज भी उम्मत मुस्लिमा में उन्हीं लोगों के दिल ज्यादा सख्त हैं जो कहते हैं हम नहीं मानते इस बात को। किसी मौके पे किसी से बात हो रही थी, यानी बातें इसलिए प्रैक्टिकल मुझे याद आ जाती हैं कि बिल्कुल वो कुरान की आयतों के मुताबिक होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पेश आते हैं हालात तो मेरे सामने उस वक्त भी आयतें होती हैं। आप सोचिए कि एक औरत जो है वो अपनी टांगे भी खोल के फिर रही है और आपको कहती है कि चेहरे के पर्दे की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यानी आप अगर एक मुसलमान है और आप चेहरा छुपा रहे हैं तो चेहरे का पर्दा कुछ नहीं है, छुपाने की जरूरत नहीं, तो उस वक्त फ़ौरन दिल में सवाल आता है कि अच्छा भाई टांगों के बारे में आप क्या कहते हैं। यानी वो लोग तावीलात करते हैं दीन की जिनको असल भी नहीं पता होता। तो लिहाजा बहस मुबासे से भी दिल सख्त हो जाते हैं। अल्लाह से ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह अगर मेरे अंदर अभी अमल की हू नहीं पैदा हो रही ना, तो मुझे दीन को झुटलाने वाला ना करने देना, मैं तावीलात ना करूं, ये सब में अपना गिल्ट हम दूर करते हैं, अमल खुद नहीं करते, मान जाए कि नहीं करते भी, अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह दे देगा। जब हम ये कहते हैं नहीं जी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है, और आज के दौर में सूद के बगैर काम नहीं होते, और आज के दौर में दिस आज ये जो बातें ना, इससे फकसत कुलूबुहुम, फिर दिल सख्त होते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों की सख्ती को दूर करे। फिर फरमाए लम्हुअन्नल्लाह युहयिल अर्द बादा मौतिहा कद बय्यन्ना लकुमुल आयाति लअल्लकुम तअक़िलून। और जान लो कि अल्लाह ताला ही जमीन को इसके मुर्दा होने के बाद जिंदगी बख्शता है, हमने तुम्हारे लिए आयात खोल खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझ सको। पीछे बात हुई दिलों की, यहाँ बात हो गई जमीन की, और ये अंदाज कुरान पाक में आपको बहुत जगह मिलेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से भी ये बात जो है मिलती है कि दिल जमीन की तरह, जमीन के ऊपर बारिश पड़ती है, जमीन नरम हो जाती है, उसमें बीज डलता है, पौधा उग जाता है। इसी तरह जो दिल है ना, ये भी ऐसे ही जैसे मट्टी है, और देखा जाए तो मट्टी से बने हैं, इस पे कुरान की बारिश पड़ती है, अंदर से ईमान का बीज फूटता है और अमल के पौधे लगते हैं। जिस तरीके से बाज दफा खजां के बाद बहार आ जाती है, मुर्दा जमीन जिंदा होने लगती है, कभी कहीं से गुजरे तो ऐसे लगता है कि यहां तो लगता है कि कभी भी कोई सब्जा होगा ही नहीं, लेकिन अगले कुछ माह बाद निकलते हैं तो वहां सब्जा होता है। जब सर्दियां आती हैं, अगर सारे दरख्तों को काट दिया जाए कि क्या फायदा, ये तो डंडियां हैं और अटक रही हैं और आने जाने लोग के कपड़े फाड़ रही हैं, तो वो बहार नहीं देखेंगे ना। बिल्कुल इसी तरह जैसे फसलें अपनी जगह पे कटती और बढ़ती हैं, इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि दिल भी बदल जाते हैं। आज अगर किसी का दिल सख्त है ना, तो कल नरम हो सकता है। आज कोई दीन से दूर है ना, तो मत उससे नफरत करो, मत उसको बुरा समझो, एक वक्त आएगा कि वो भी जिंदा होगा। और दिलों की मुर्दगी क्या है? कुफर, जहालत, इस्लाम से दूरी, अमल से दूरी। और दिलों की जिंदगी क्या है? कि इंसान अमल की तरफ आए। तो लिहाजा अगर हम खुद दीन से दूर हैं तो मायूस ना हो, मुसलसल कोशिश करें पानी की। अब देखिए एक ही चीज़ नरम करती है चीज़ों को, वो पानी है। टग उनते हुए आप डाल रहे हैं, या खाना बना रहे हैं, या फसलों को उगाने के लिए डालते हैं, हमारे दिलों को भी नरम करेगी तो एक ही चीज़ करेगी, और वो अल्लाह की किताब है। अल्लाह के नबी सल्लम का यही मौजज़ा था कि आपने लोगों के दिल नरम किए थे, कुरान के जरिए इस तरह से तस्कीर की कि लोग गुनाह करके घर नहीं जाते थे, नबी के पास आते थे कि हमें हद लगा दे। और यही कुरान का असर है कि बंदा एकदम हर गुनाह नहीं छोड़ता, लेकिन गुनाहों का एहसास पैदा हो जाता है। और यहाँ देखिए एलमु का लफ्ज़ है, अमर है, हुक्म है, इंटरोगेटिव है, कि यहाँ इल्म हासिल करने की दावत दी जा रही है कि अगर तुम ये अंदर की कहानियाँ जानना चाहते हो तो इल्म हासिल करो। दिल सख्त हो गए हैं तो उनकी नरमी का तरीका क्या है? गौर करो, इल्म हासिल करो, समझो, और देखो फिर तुम्हारे दिल भी मुर्दा होंगे नहीं। कुछ लोगों के अंदर बड़ी खैर होती है, लेकिन बाजार बड़े बेदीन लगते हैं, हाल हुलिया ऐसे लगता है कि बस बेजार, लेकिन उनका बीज अंदर छुपा हुआ है, जरूरत है उसके ऊपर बारिश के छींटों की। एक दफा बात सुन के जाते हैं ना, उनकी जिंदगी बदल जाती है, और कुछ हर हफ्ते हर दिन सुनते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। तो कहीं भी फसल लगने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक बीज हो और दूसरा पानी हो। पानी क्या है? आज बारिश, वही बीज क्या है? अंदर का ईमान। अगर हमारे अंदर ईमान मौजूद है, हल्की सी बात सुन के भी दिल बदल जाएगा, और अगर इसका ऑपोजिट है तो बात नहीं बनेगी। हम सबको अपने लिए अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे दिलों के अंदर नरमी पैदा कर दे, और जितना अपना मुहासबा करेंगे उतना ही फायदा होगा। अगर आप कहीं भी कोई चीज़ लगाना चाहते हैं, मसलन आप बीज डालना चाहते हैं, आम की गुठली लगाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? पहले ज़मीन को नरम करेंगे ना, फिर गुठली डालेंगे। इसी तरह बास लोगों के साथ भी हमें ये प्रॉब्लम होता है, मसलन शौहर, बीवी, बच्चे, सहेलियाँ। अब आपने कुरान पढ़ ली है, लेकिन इनमें से किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, या आपको वो आपके उस रवैयों से मुख्तलिफ दिखते हैं, अब क्या करेंगे आप? पहले उनके दिलों को नरम करेंगे, इर्द गिर्द की मट्टी को नरम करें, फिर आप देखें कि आप गुठली भी डाल देंगे ना तो वो भी अंदर चली जाएगी। सख्त ज़मीन के अंदर आप बीज भी डालेंगे ना तो आपका हाथ टूटेगा। तो जिसको भी अल्लाह की तरफ लाना है, उसके लिए यही दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसका दिल खोल दे, अपने दिल को ख्वाहिशों से दूर करे इंसान, حق اور باطل کا فرق سمجھ سکے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اور سب سے زیادہ تو فکر انسان کو اپنی ہونی چاہیے، نہ کہ میرا کیا حال ہوتا ہے، اکیلے میں اپنے آپ سے باتیں کرے۔ اخلاص آتا ہی تب ہے جب انسان تنہائی میں اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ کبھی اس غلط فہمی میں نہ آ جائیں کہ لوگ آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں تو آپ نیک ہیں۔ آپ کب نیک ہیں؟ جب تنہائی میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، مشکل آئے تو آپ کا دل مطمئن ہو، یہ آپ کے نیک ہونے کی علامت ہے۔ دوسرے کی تکلیف دیکھ کے آپ کا دل پسیج جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اور ایسی دعائیں بھی اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں کہ جس میں دلوں کی نرمی کی بات ہے۔